From the conference center at Temple Square in Salt Lake
City. Salt Lake City में Temple Square सम्मेलन से इंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 156वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन की रविवार सुबह का सत्र है. इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा. इसका प्रसारण बॉनेवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है. बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है. अध्यक्ष डीटर एफ उपडोर गिरजे की प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you.
अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 186वें अर्धवार्षिक महासम्मेलन की सुबह रविवार सुबह में आपका स्वागत करते हैं. अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है. हम विश्व भर में उन सबको अपनी शुभकामनाएं देते हैं जो इन कार्रवाइयों में पूरे विश्व भर में भाग ले रहे हैं. इस सत्र का संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा मैक विल्बर्ग के निर्देशन में क्लिक क्रिस्टेंसन और रिचर्ड एलियट के साथ ऑर्गन पर होगा. गायक मंडली ने इस सत्र का आरंभ माय रिडीमर लिव्स और अब इन हिम्स ऑफ प्रेज गाकर हमारा स्वागत करेंगे. आरंभिक प्रार्थना इसके पश्चात सत्र के एल्डर क्रिस्टोफरसन गोल्ड दिया द्वारा दी जाएगी.
Thank you.
Our beloved Heavenly Father,
we serve. हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम सब आपके सामने अनुग्रह करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें खुशियों के लिए और उद्धार के लिए प्लान बनाया, और यीशु मसीह के प्रेम के लिए हम आपके आभारी हैं। उस कवेनेंट और होली घोष्ट के उपहार के लिए हम आपका आभार करते हैं। परमेश्वर, हम अपने प्रॉफिट, भविष्यवक्ता और दिव्य दृष्टा के लिए भी आपके आभारी हैं, और हम अपने भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन के प्रेम के लिए आभारी हैं। पिता, उन्हें आशीषित करें और उन सबको आशीषित करें जो आपको याद करें, और उनकी मदद करें जो गॉस्पल सुसमाचार लोगों में पहुंचा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। उनको खुशियां दें, वो सभी जो इस मिशनरी काम में लगे हुए हैं। पवित्र नाम, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।
It will now be our joy and privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson.
On this day of joy and gladness,
Second counselor in the Relief Society General Presidency, President Monson.
सलाहकार बोलेगी।
My beloved brothers and sisters, both here in the conference center.
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दोनों यहाँ सम्मेलन केंद्र और पूरे संसार में, मैं कितना आभारी हूँ इस अवसर के लिए। इस सुबह मैं आपके साथ अपने विचार बांटता हूँ। 50 वर्ष पहले जुलाई 1964 में मुझे एक कार्य न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड्स फेयर के मेजबानी के दौरान मिला था। भोर में एक सुबह मैं मेले के मॉर्मन पवेलियन में गया। मैं गिरजे की फिल्म मैन सर्च फॉर हैप्पीनेस के शो से पहले वहां पहुंचा था। उद्धार की योजना की एक चित्रित कला को तब से गिरजे की क्लासिक बन गई। मैं एक युवा पुरुष के साथ बैठा था जो शायद 35 साल का होगा। हमने संक्षिप्त में बात की। वह हमारे विश्वास का सदस्य नहीं था। तब फिर रोशनी कम हुई और शो शुरू हुआ। हमने कथावाचक के स्वर सुने जैसे वह तीखे और विश्व प्रश्नों को पूछ रहा था। मैं कहां से आया हूं? मैं यहां क्यों हूं? मैं कहां जाऊंगा जब इस जीवन को छोड़ूंगा? सभी के कान उत्तर सुनने को तन गए और सभी की आंखें चित्रों पर जमी गई थी। हमारे पहले के जीवन का वर्णन दिया गया, साथ में हमारा पृथ्वी पर आने का उद्देश्य समझाया गया। हम साक्षी हैं इस जीवन से गुजर कर जाने के। भावुकता का वर्णन एक बुजुर्ग दादा नाना का और उनका प्रतापी मिलन अपने प्रियजनों से जो आत्मिक संसार में उनसे पहले चले गए थे। इस सुंदर चित्रकारी की समाप्ति पर हमें स्वर्गीय पिता की हमारे लिए योजना, भीड़ एकदम शांत थी। मैंने पूछा, क्या उसने प्रस्तुति का आनंद लिया? उसने जोर देकर जवाब दिया, यहाँ की सत्य है, यही सत्य है। हमारे पिता कि हमारे लिए आनंद की योजना का, हमारे उद्धार कि हमारे प्रचारकों द्वारा संसार भर में बांटे जाती है। सभी नहीं इस पवित्र संदेश को ग्रहण करते हैं और इसे गले लगाते हैं। इसलिए पुरुष और स्त्री वह जगह वैसे ही जैसे मेरा युवा मित्र न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर का उसकी सच्चाई को पहचाना और वह अपने पैरों को मार्ग पर रखता है जो कि उसे सुरक्षापूर्वक घर ले जाएंगे। विशेषकर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की योजना है, उसके प्रायश्चित बलिदान के बिना सभी खत्म हो जाएगा। ये काफी नहीं है, तथापि सिर्फ उसमें और उसकी सेवा में विश्वास करना है। हमें काम करने और सीखने की, खोजने और प्रार्थना, पश्चाताप और सुधारने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के नियम को जानना और उन्हें जानने की जरूरत है। हमें उसके बचाव धन विधियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सिर्फ ऐसा करने से हमें सच्चा अनंत आनंद प्राप्त होगा।
He has told us, I quote, "This is my work and my glory to bring you past the immortality."
उसने कुछ भी नहीं सहज के रखा हमारे लाभ के लिए। उसने हमें बताया था, ये मेरा काम और मेरी महिमा है, मनुष्य और अमरत्व और अनंत जीवन पूरा करूंगा। अपनी आत्मा की गहराई से और सारी विनम्रता से मैं महान उपहार की गवाही देता हूं, जो कि पिता की योजना हमारे लिए है। ये एक संपूर्ण मार्ग शांति और आनंद दोनों यहाँ और आने वाले संसार में है। मैं मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने प्रेम और अपनी आशीषें आपके लिए छोड़ जाता हूँ, जिससे मैं समाप्त करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मुक्तिदाता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
थैंक यू प्रेसिडेंट मॉन्सन, वी लव एंड सस्टेन यू।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक नियम के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वो है हमारे आत्मिक जीवन जीने की कुंजी। यह एक नियम है जो कि सिर्फ अति महत्वपूर्ण बन जाता है जैसे आपदाएं और उपहास हमारे चारों ओर बढ़ते हैं। यह अंतिम दिन है तो हम में से किसी को भी आश्चर्य करने आवश्यकता नहीं है। जब हम भविष्यवाणी को पूरा होते देखते हैं, भविष्यवक्ताओं के मेजबान शामिल हैं यशाया, पौलुस, नेफी और मॉर्मन पूर्वानुमान कर देखा कि खतरनाक समय आने वाले हैं। वो हमारा दिन पूरा संसार में खलबली होगी कि मनुष्य स्वार्थी, दया रहित और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे और वो सारे शैतान के सेवक बन जाएंगे जो विपत्तियों के कारण कार्य संभालेंगे। वास्तव में आप और मैं मलयुद्ध और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जैसे राष्ट्रों बीच संघर्ष, जैसे कायर आतंकवादी मासूमों को मारते हैं और जैसे सब जगह भ्रष्टाचार व्यापार में से सरकार तक सब बढ़कर आम जगहों पर हो गया है, हमारी सहायता कौन कर सकता है? हमारे स्वयं के संघर्ष में और कठोर चुनौतियों में हम सबकी मदद कौन कर सकता है? भविष्य वक्ता लेही ने एक आत्मिक जीने के नियम सिखाया। पहला, उसकी परिस्थितियों पर विचारें। उसे यरूशलेम में सच्चाई का प्रचार करने के लिए सताया गया था और प्रभु के निर्देशानुसार अपना सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ वीरान भूमि पर चले गए। वह तंबू में रहे और जीने के लिए जो भोजन रास्ते में मिला अनचाहे मंजिल की ओर बढ़ते रहे। पुत्रों पर ध्यान रखा। लमान और लेमुएल ने प्रभु के शिक्षाओं के विरोध किया और अपने भाई नेफी और सम पर हमला किया था। सफाई से लेही विरोध, बेताबी, सिर दर्द, पीड़ा, निराशहीन और दुख को जानता था। उसने साहस से घोषणा की और बिना रुकावट के एक नियम जिसे प्रभु द्वारा प्रकट किया गया, मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो। कल्पना करें वो सारे शब्दों में जिसे अपनी प्रकृति और नश्वरता में जीने के उद्देश्य से थे किया, उसने शब्द चुना आनंद। जीवन चक्रधारी और गतिरोध, परीक्षाओं और हर प्रकार की चुनौतियों से भरा है। हम में से हर एक के पास समय है। जब कलेश और शोक और निराशा लगभग हमें निकल लेती है तो भी हमारे पास यहाँ पर आनंद है। हाँ, जवाब घुसता है, हाँ, परंतु यह कैसे संभव है और हम और क्या कर सकते हैं आनंद को लेने के लिए जिसे स्वर्ग पिता ने हमारे लिए कोष में रखा है। एलिजा आर स्नो सहायता संस्था की दूसरी जनरल अध्यक्ष ने दिलचस्प उत्तर दिया था। मिजोरी के बुरा विनाश के आदेश के कारण 1838 में भीषण सर्दी के आने से निकाला गया था। उसे और अन्य संतों को जोर लगाकर शहर की ओर उस सर्दी में भेजा गया था। एक शाम एलिजा के परिवार को एक छोटे से केबिन में शरणार्थी संतों के साथ रात गुजारनी पड़ी थी। बहुत से चींक के बीच में कूदे निकालकर और आग में जलाए गए थे। उनके द्वारा जो वह पर पहले रहकर गए थे तो वहां पर कूड़ों के बीच बड़े बड़े छेदा थे जहां से बिल्ली आ जा सकती थी। वह भीषण ठंड थी, उसे खाने पत्थर के समान जमे हुए थे। उस रात कुछ 80 लोग उस छोटे से केबिन में एकत्र हुए थे। सिर्फ 20 फीट स्क्वायर था। बहुत से बैठकर या खड़े होकर सारी रात गर्म रखने की कोशिश में लगे रहे। 12 एक पुरुषों का समूह रात भर धधकती हुई आग के पास एक चित्र होकर गुजारे थे। कुछ स्नुगिति गा रहे थे, कुछ अन्य कुछ जमे हुए आलू को भूनकर। एलिजा रिकॉर्ड करती हैं, कोई शिकायत नहीं सुनी, सभी आनंदित थे और उसने पहनावे से अनुमान लगाया था जाता। अजनबी हमें हर्ष से पर्यटक ले चला, ना कि एक बैंड को देश में निकाला गया था। एलिजा ने रिपोर्ट की, वो थकाने वाली हड्डी जमाने वाला असाधारण रूप से आशावादी शाम थी। वह घोषित करती है, वह एक बहुत ही सुहानी रात थी। कोई नहीं परंतु संत हर हालत में खुश रह सकते हैं। यही था, संत हर हाल में खुश रह सकते हैं। हम खुशी का आनंद बुरे दिन, बुरे हफ्ते या यहाँ तक बुरे साल में भी महसूस कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आनंद जिसे हम महसूस करते हैं हालत के साथ थोड़े ही हमारे जीवन से लेना देना होता है और सब कुछ हमारे जीवन पर केंद्रित होता है। जब हम हमारे जीवन परमेश्वर की उद्धार की योजना और यीशु मसीह और उसके विच सुसमाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम प्रसन्नता को महसूस कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है या नहीं हो रहा हमारे जीवन, आनंद उस और उसके कारण आता है। वही सारे आनंद का स्रोत है। हम उसे बड़ा दिन में महसूस करते हैं। हम जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम गाते हैं और हम उसे साल भर महसूस कर सकते हैं। अंतिम दिनों के संतों के लिए यीशु मसीह की आनंद है। इसलिए हमारे प्रचारक अपने घर छोड़कर उसका सुसमाचार प्रचार करते हैं। उनका उद्देश्य गिरजा सदस्य की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारे प्रचारक शिक्षा और बपतिस्मा देकर संसार के लोगों को आनंद देते हैं, जैसे उद्धारकर्ता शांति देता है कि जो समझ से बिल्कुल परे है। वह प्रबलता, गहराई और आनंद की उदारता जो इंसान को तुच्छ जानकर तर्क कर या नश्वर समझता है। उदाहरण के लिए, यह संभव प्रतीत नहीं होता कि आनंद को महसूस करें जब अपना बच्चा बीमारी से ग्रस्त हो या नौकरी छूट जाए या जब आपका साथी धोखा दे। यद्यपि निश्चित रूप से आनंद उद्धारकर्ता देता है, उसकी खुशी हमेशा है, हमें आश्वासन देती है कि हमारे कष्ट थोड़े समय के होते हैं और तुम्हारे लाभ के लिए प्रतिष्ठित करेगा। कैसे फिर क्या हम उस आनंद पर दावा कर सकते हैं? हम आरंभ कर सकते हैं, यीशु रचयिता और हमारे विश्वास का अनंत अंत करने वाले हैं। हर विचार में हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे प्रार्थनाओं और उसे और हमारे स्वर्ग पिता से बनाए हमारे अनुबंधों से, जैसे हमारा उद्धारकर्ता अधिक से अधिक हमें वास्तविक लगता है और जैसे हम उसकी खुशी को हमारे लिए दिए जाने का आग्रह करते हैं, हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। आनंद शक्तिशाली होता है और आनंद पर ध्यान केंद्रित कर हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य लाता है। सभी बातों में यीशु मसीह हमारा परम उदाहरण है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है क्रूस का दुख सहा। उसको सोचो, उसके लिए आदेश अंत तक अति कष्टदायक अनुभव रह कभी पृथ्वी पर सहा है। हमारा उद्धारकर्ता ने आनंद पर ध्यान केंद्रित किया है। और आनंद क्या था जो उसके सामने रखा गया था? सत्य में उससे शामिल या शुद्धता, चंगाई और हमारी ताकत का आनंद, सभी के पापों के लिए जो पश्चाताप करना चाहते हैं के भुगतान के लिए आनंद, आपके और मेरे लिए हर घर को लौटना शुद्ध और योग्य और हमारे स्वर्ग के अभिभावकों और परिवारों के साथ जीने का आनंद है। यदि हम आनंद पर ध्यान केंद्रित करें जो कि हमारे पास आएगा या जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम और क्या कह सकते हैं जो कि हमारे जबरदस्त लगता है, दर्द डरावना या साधारणता से असंभव लगता है। एक पिता आत्मिक दुविधा की परिस्थिति में आनंद पर ध्यान केंद्रित करता आखिरकार शुद्ध और प्रभु के साथ साफ होता है, दोष और शर्म से मुक्त होकर आनंद करता है और दिमागी शांति का आनंद लेता है। उस पर ध्यान केंद्रित करना प्रोत्साहन और अनंत अंत तक समर्पण करने देता है जो असंभव लगता है। पूरी तरह से अपनी पत्नी और बिशप ने अब समस्या पोर्नोग्राफी और इनफिडेलिटी के बारे में स्वीकारता है। वह जब बिशप की निम्न सारी सलाहों उसे जो करने को दी है मानता है और अपने पूरे हृदय से प्रयत्न कर अपनी पत्नी का भरोसा दोबारा से जीतना चाहता है। एक युवती आनंद पर ध्यान केंद्रित कर यौन संबंध से शुद्ध रहने में मदद करती है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं जैसे वह प्रसिद्ध और उत्तेजक आत्मिक खतरनाक परिस्थिति से बाहर चली जाती है। एक पुरुष जो अपनी पत्नी को बेइज्जत करता है और अपने बच्चों पर गुस्सा उतारकर संतुष्ट होता है, योग्य बन पवित्र आत्मा को जैसे उसकी हमेशा की साथी हो को लेकर आनंद पर ध्यान केंद्रित करता है। वह ध्यान केंद्रित करना उसे प्रकृति मनुष्य से दूर करने में प्रोत्साहित करता है, जिसे वह बार बार परास्त करता है और जरूरत के लिए बदलाव करता है। एलिजा और हमारे पर्थ प्रदर्शक आनंद पर ध्यान केंद्रित कर सियोन पर पहुंचाने से उनकी सहायता रॉकी रिज करता है। आप और मैं क्या हासिल करेंगे आनंद पर ध्यान केंद्रित कर जो कि हमारे सामने रखा गया है? कौन सा पश्चाताप तब फिर संभव होगा? कौन सी कमजोरी तब कब ताकत बन जाएगी? कौन सा अनुशासन करना आशीष बन जाएगा? कौन सी निराशा या त्रासदी हमारी अच्छाई में बदल जाएगी? और कौन सी चुनौती भरी प्रभु की सेवा में हम देने में समर्थ होंगे? याद है कोरी होर द एंटी क्राइस्ट उद्धारकर्ता के बारे में गलत बातें उगलता है। कोरी होर जगह जगह जाता है और ताकि पकड़ ना गया उसे उच्च याजक के सामने लाया गया था, जिसने पूछा, तुम प्रभु के पथ को क्यों दूषित करते हो? तुम इनकी आनंद में बाधा डालने के लिए क्यों कहते हो कि मसीह नहीं आएगा? कुछ भी जो कि मसीह का या उसके सिद्धांत का विरोध करे आनंद में बाधा डालता है, उसके शामिल हैं मनुष्य की फिलॉसफीज, तो इतना अधिक ऑनलाइन में और ब्लॉजिक फेयर में जिसमें वैसा ही किया जैसा कोरी ने किया था। यदि हम संसार की ओर देखें और आनंद के लिए उसका फॉर्मूला का अनुसरण करें, हमें कभी भी आनंद को जान पाएंगे। अयोग्य शायद अनुभव ले किसी भी भावनाओं और संवेदना का, लेकिन वह कभी भी आनंद का अनुभव नहीं ले पाएंगे। आनंद विश्वासी के लिए उपहार है। यह उपहार जो जानबूझकर नेकता और जीवन जीने की कोशिश से लाता है, जैसे यीशु मसीह द्वारा सिखाया था। वह हमें शिक्षा देता है आनंद को कैसे लिया जाए। वह हमारे स्वर्गीय पिता को अपना परमेश्वर चुनते हैं और जब हम उद्धारकर्ता के प्रायश्चित को हमारे जीवन में काम करता महसूस कर सकते हैं, हम आनंद से भर जाएंगे। हर समय अपने दंपत्ति पोषण करते हैं और अपने बच्चों के मार्गदर्शन देते हैं। हर समय हम किसी को क्षमा करते हैं या उसके क्षमा की याचना करते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं। प्रत्येक दिन जब आप और मैं स्लेटियन नियम को जीना चुनते हैं, हर दिन जबकि हमारे अनुबंध का पालन करते हैं और दूसरों को ऐसा करने में मदद करते, आनंद हमारा होगा। सॉल्मिस्ट के इन शब्दों को सुने, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जैसे यह नियम हमारे हृदय में स्थापित होता है, हर और प्रत्येक दिन आनंद प्रसन्नता का एक दिन होता हो सकता है। मैं भी यीशु मसीह के पवित्र नाम गवाही देता हूँ, आमीन।
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness.
हम इस समय Tabernacle Choir का धन्यवाद देते हैं। मेरी पहले की यादें से एक प्रभु भोज समय सभाएं वार्म भोल ऑस्ट्रेलिया में हमारे घर में होती थी। 10 और 15 लोगों के बीच हमारी शाखा में आते थे और मेरे पिता तीन में से एक प्रभुत्व धारक हर बार प्रभोज को आशीष देना का अवसर मिलता था। मुझे याद है, मैं महसूस करता था जैसे मैं प्रभु भोज की प्रार्थना के शब्दों को विनम्रता और ध्यान पूर्वक पढ़ते थे। अक्सर उनकी आवाज कांपती थी, जैसे आत्मा को महसूस करते थे। वे कभी कभी रुक कर अपनी भावनाओं को रोकते प्रार्थना को खत्म करते थे। एक 5 साल के बच्चे के रूप में मैं पूरा मतलब नहीं समझ सकता था, फिर क्या बोला या क्या किया जा रहा था। इसलिए मैं जानता था कुछ तो विशेष हो रहा है। मुझे शांत और पवित्र आत्मा की आश्वासन की अनुभूति का एहसास होता था, जैसे मेरे पिता हमारे लिए उधारकर्ता के प्रेम का चिंतन करते थे। उधारकर्ता शिक्षा देते हैं और ऐसा ही तुम उन सब के साथ करना जो पश्चाताप करें और मेरे नाम पर बपतिस्मा लें। और यहाँ तुम मेरे उन रक्त की स्मृति में करना जिसे मैंने तुम्हारे लिए गिराया था, जिससे तुम पिता के सामने यह साक्षी दे सको कि तुम ने सदा मुझे याद रखा और मैं और तुम ने मुझे सदा याद रखा। तब तुम मेरी आत्मा अपने पास पाओगे। मैं हम सबको आमंत्रित करता हूँ 5 तरीके प्रभोज के पवित्र धर्म विधि के हर बार भाग लेने प्रभाव और समर्थ को बढ़ाते हैं। एक धर्म विधि जो कि हमें पवित्र बनाने में हमारी सहायता करती है। पहले से तैयारी करें। हम प्रभुभोज के लिए तैयारी की शुरुआत प्रभुभोज सभा से पहले कर सकते हैं। शनिवार अच्छा समय है हमारे आत्मिक उन्नति और तैयारी करने का। नश्वरता एक विशिष्ट उपहार है हमारी यात्रा का कि हम स्वर्गीय पिता की तरह बन जाएंगे। आवश्यकता अनुसार इसमें सम्मिलित हैं परीक्षाएं और चुनौतियां जो कि हमें अवसर प्रदान करती हैं बदलने और प्रगति करने का। राजा बेहमेन सिखाता है कि अगर मनुष्य पवित्र आत्मा के आकर्षणों से आकर्षित नहीं होता और अपने स्वाभाविक प्रकृति को त्याग कर प्रभु मसीह के प्रायश्चित द्वारा संत बनता, तब वह अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही परमेश्वर का शत्रु था और सदैव रहेगा। प्रभुभोज धर्म विधि में भाग लेना एक मौका देता है अपने हृदयों और परमेश्वर की आत्मा को पूरी तरह से संपन्न करने का। हमारी पहले से तैयारी हमारे हृदय टूट जाते हैं, जैसे हम मसीह के प्रायश्चित अपनी गलतियों को और क्रोध के लिए पश्चाताप का कर आभार व्यक्त करते हैं और पिता से हमारी यात्रा को जारी रखने और उसकी तरह और अधिक बनने के लिए मदद मांगते हैं। और तब हम आगे से के अवसरों की ओर देखकर प्रभुभोज प्रदान करता है, उसके बलिदान को याद करते हैं और हमारे सारे अनुबंधों का नवीकरण करते हैं। हमें जो बनाए थे पहले चुनना। हम प्रभुभोज अनुभव बढ़ सकता है जब हम सभा में पहले पहुंचकर और पूर्व बरसते संगीत का आनंद ले। बोर्ड के पैकर सिखाते हैं पूर्व संगीत श्रद्धा से बजाते हुए आत्मा के लिए शोषण है। यह प्रेरणा को आमंत्रित करता है। यह समय नहीं है। प्रेसिडेंट रसल एम नेल्सन समझाते हैं संदेशों को वार्तालाप या प्रसार के लिए परंतु प्रार्थना पूर्वक संपूर्ण का समय है मार्गदर्शनों और सदस्य की प्रभोज की आत्मिक तैयारी के लिए। प्रभोज के सुतुति गीत के शब्दों से गाकर और सीखें। प्रभुभोज सुतुति गीत एक विशेष महत्वपूर्ण भाग है हमारे प्रभुभोज अनुभव का। संगीत हमारे विचारों और अनुभूति को ऊपर उठाता है। प्रभुभोज सुति गीत का महान प्रभाव होता है जब हम शब्दों का ध्यान केंद्रित करते और सशक्त सिद्धांत को सीखते हैं। हम अधिक शब्दों में से सीखते हैं जैसे आघात खंडित फाड़ डालना। हमारे लिए हमें ध्यान रखना है कि निश्चित रहना है हमारे ध्यान और साथ साफ रखें और शुद्ध और जहां न्याय प्रेम और दया पवित्र लाय में मिलते हैं। जैसे हम सुस्ती गीत में प्रतीक को लेने की तैयारी करते हैं शब्द हमारे अनुबंध की प्रतिज्ञा का भाग बन जा सकते हैं। सोच के उदाहरण के लिए हम आपसे प्रेम करते हैं हमारे हृदय भरे हुए हैं हम आपके चुने हुए मार्ग पर चलने के लिए बने हैं। प्रभुभोज प्रार्थना में आत्मीयता से भाग लें। प्रभुभोज प्रार्थना के सामान्य शब्दों से लय बनाने के हम सीखें और अधिक से अधिक महसूस कर सकते हैं। जैसे हम आत्मिक से में भाग लेकर वचनवृद्ध पर विचार कर और आशीषों से बंध कर इन पवित्र प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। रोटी और पानी आशीषित और पवित्र हैं हमारी आत्माओं के लिए। यह हमें याद दिलाता है उद्धारकर्ता का बलिदान का और कि हमें पवित्र बनने में उसकी सहायता करता है। प्रार्थना समझाती है कि हमें रोटी और पुत्र के शरीर की याद में लेते हैं जिसे उसने सभी के लिए पुनर्स्थान के योग्य करने का भुगतान करने को दिया था, और हमें हम पानी को पीते हैं, पुत्र के लहू को स्मरण कर लेते हैं, जिसे उस उदारता से बहाया कि हम मुक्त हो सके पश्चाताप के शर्त पर। प्रार्थना अनुबंध का परिचय वाक्यांश से करती है वे कि वे करना चाहते हैं। यह साधारण वाक्यांश में हमारे लिए बहुत समर्थ है। क्या हम सेवा और भाग लेने के इच्छुक होते हैं? क्या हम बदलना चाहते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों को बताना चाहते हैं? क्या हम दूसरे तक पहुंचकर और आशीष देना चाहते हैं? क्या हम उधारकर्ता पर भरोसा करना चाहते हैं? जैसे वादे कायम रहते हैं और जैसे काम हम लेते हैं, हम अपने हृदयों में पुष्टि करते हैं कि हम करने को राजी हैं। यीशु मसीह का नाम अपने ऊपर लें, उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयत्न करें, सदैव स्मरण रखें। प्रार्थना समाप्ति के साथ एक उत्तम आमंत्रण का वादा है, जिससे कि आत्मा और साथ सदैव रहेगी। पौलुस ने लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और समय है। सुंदर आशीषों और उपहार हमारे लिए उपलब्ध हैं, जैसे हम और अपने अनुबंधों का पालन करते हैं। मनन और स्मरण करो, जैसे प्रभोज प्रतीक बांटा जाता है। पुरोहित धारक होने का श्रद्धा के क्षणों में प्रभोज बांटना हमारे लिए पवित्र बना सकता है। जैसे रोटी को बांटा जाता है, हम उस पर ध्यान देते हैं कि वह वास्तविक प्रेम हमारे लिए है। उद्धारकर्ता ने मृत्यु को अपने ऊपर ले लेगा, जिससे वह अपने लोगों की मृत्यु के बंधन को भी खोल सके और जो उसके लोगों को बंधे हुए हैं। हम स्मरण रखते हैं कि पुनरुत्थान की महान तम आशीषों के बाद सब के लिए आएगा, चाहे स्वतंत्र हो या दास, स्त्री हो या पुरुष, पापी हो, धार्मिक हो, और यहाँ तक कि उनके सिर पर एक बाल भी ना हो, नहीं खोएगा। जैसे कि हमें पता है, जैसे पानी दिया जाता है, हम उद्धारकर्ता के आग्रह को स्मरण करते हैं। देखो, मुझे परमेश्वर ने सब बातों के लिए दुख सहा कि तुम ना दुख उठाओ, ताकि तुम पश्चाताप कर सको। कौन सी पीड़ा मुझे दुख देती है? परमेश्वर को भी, जो सब ने महानतम है, वह भी दर्द से कांप उठता और हर रोम से लहू बहा, और आत्मा और शरीर दोनों के कष्ट सहकर उसने उसे प्याले को ना पिया। हमें यह याद है कि वह लेता है ताकि मानव शरीर के अनुसरण उसकी दुर्बलता को भी अपने ऊपर लेगा, जिससे उसका प्याला दया से उभर उठेगा, जिससे वह मानव शरीर की दुर्बलताओं से के अनुसार अपने लोगों के सहायता कर सकेगा। जैसे हम अपने प्रभुभोज अनुभव पर विचारते हैं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं इस सप्ताह प्रभुभोज के लिए कैसे तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैंने अपना योगदान अति श्रद्धा और प्रकटीकरण के दिया, जो कि प्रभुभोज के आभारण का संगत करता है? मैं क्या सुनता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि जैसा प्रभु प्रार्थना सुनता है, मैं क्या सोचता हूँ जो ऐसे प्रभु किया जाता है? एल्डर डेविड बेडनार ने सिखाया है कि प्रभुभोज मैं गवाही देता हूँ कि बहुत सी आशीषें हमारे लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि हम अपनी तैयारी और आत्मिकता की भागीदारी में प्रभु भोज की नियुक्ति को बढ़ाते हैं। मैं आगे गवाही देता हूँ कि यह आशीषें हमारे लिए हैं, उपलब्ध हैं। हमारे स्वर्ग में पिता के प्रेम और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के आनंद प्राश्चित बलिदान के कारण, उसके पवित्र नाम में, यहाँ तक कि यीशु मसीह में, आमीन।
A few months before President Boyd came, अध्यक्ष बॉयड के पैकर का निधन हो गया। जनरल पुरोहित और महासहायक के अध्यक्षताओं को वह मूल्यवान अवसर उनसे सुनने का प्राप्त हुआ। मैं भूला नहीं पा रही थी जो उन्होंने कहा। उन्होंने बांटा कि उन्होंने अपने जीवन में पीछे कर खोज की, उन पापों के सबूतों जो उन्होंने किए थे, और पश्चाताप किया, और उन्हें उनका कोई निशान नहीं मिला। वे अब और नहीं थे। उन्होंने फिर गवाह दी कि हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बलिदान द्वारा और वास्तविक पश्चाताप द्वारा उनके पास पूरी तरह से चले गए। वैसे भी वे कभी ही नहीं। अध्यक्ष पैकर ने हम सबको अध्यक्ष होने से
उस दिन अनुदेश दिया कि यह सच है हम सबके लिए जो वास्तविक पश्चाताप करता है। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो कुछ वर्षों पूरे आचरण के अपराध में शामिल था। कुछ समय के लिए इस व्यक्ति को भी अपनी पत्नी और पुरोहित अध्यक्षों को बताने में शर्मिंदगी हुई। वह पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहता था, परंतु वास्तव में उसने व्यक्त किया कि वह अपनी अनंत मुक्ति को देने के लिए तैयार था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों को पीड़ा, शर्म या कोई और निष्कर्ष उसके पता देने न। जब उसने पाप किया हो, शैतान अक्सर हमें विश्वास दिखाता है कि निस्वार्थ चीजें दूसरों को अपने पापों के ज्ञान से टूटने से बचाने में है। बिशप को बताना भी इसमें शामिल है, जो हमारे जीवन को पुरोहितों की पूंजियों द्वारा इज़राइल के एक सम्मान न्यायकर्ता जैसे आशीष कर सकते हैं। सच किंतु यह है कि निस्वार्थ और मसीह जैसी चीजें पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना है, यह स्वर्गीय पिता की मुक्ति की महान योजना है। आखिरकार इस पुरुष ने अपने पापों को अपनी विश्वासी पत्नी और गिरजा के अध्यक्षों को बताया, गहरा अफसोस प्रकट करते हुए। यह उनसे मुश्किल चीज थी जो उसने कभी की थी। एहसास आराम शांति प्रेम आधारकर्ता के लिए आभार का और एक ज्ञान का कि प्रभु उसके खोज को उठाए हैं और उन्हें आनंद भाव के परे बेपरवाह परिणाम और उसके भविष्य के उसे पक्का था कि उसकी पत्नी और बच्चे तरस नहस हो जाएंगे और वे थे और व्यवहारिक कार्यवाही होगी और उन्हें उनके बुलाहट से हटा दिया जाएगा। और ऐसा हुआ, उसे पक्का पता था कि उसकी पत्नी का मन टूट जाएगा, पीड़ित होगा और गुस्सा, और वह भी, और उन्हें यकीन था कि वह उन्हें छोड़ देगी, बच्चों को अपने साथ ले जाएगी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। कभी कभी गंभीर पाप तलाक की ओर ले जाते हैं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो आवश्यक भो है, परंतु यह पुरुष अचंभे में था। नफी पत्नी ने उससे प्रेम रखा और अपन आप को हर तरह से उसकी मदद करने में अर्पण किया। समय के साथ उसने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। उसने उद्धारकर्ता के बलिदान की चंगाई की पत्नी को महसूस किया था। वर्षों बाद यह जोड़ और उसके तीन बच्चे दृढ़ और विश्वासी हैं। पति और पत्नी मंदिर में सेवा करते हैं और उसकी शादी अत्युत्तम और विश्वसनीय है। इस मनुष्य की गवाही की गहराइयों और उसका उद्धारकर्ता के लिए प्रेम और आभार और उसका बलिदान उसके जीवन में स्पष्ट है। इब्राहिमियों अमूलकों ने गवाही दी कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे आओ और अपने हृदय को अब और कठोर करो। यदि तुम पश्चाताप करोगे, तुरंत मुक्ति की महान योजना तुम्हारे पास लाई जाएगी। जब मैंने अपने पति के साथ सेवा की, एक मिशन के अध्यक्ष थे, हम एयरपोर्ट प्रचारकों के एक बड़े समूह को लेने गए। एक विश्वास युवा पुरुष को अपनी आंखों ने देखा। वह उदास, गिरा हुआ और उजड़ा सा लग रहा था। उसने उसे सावधानी से दोपहर तक देखा। संध्या तक इस युवा पुरुष ने एक बिता हुआ और उसके अध्यक्षों ने निर्णय लिया कि उसे घर वापस जाना होगा। हालांकि हम बहुत उदास थे कि वह उसे अपने मिशन पर आने से पहले पश्चाताप नहीं किया था। एयरपोर्ट जाते समय उसने और प्रेम से उसकी सराहना की थी। उसमें आगे आने का साहस और अपने वादा की कि हम उसके संपर्क में रहेंगे। यह युवा पुरुष आशीषित था। उसके माता पिता, महान पुरोहित अध्यक्ष और एक सहायक स्नेही वार्ड एक वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद पूरी तरह से पश्चाताप कर और अध्यक्षता के बलिदान को ले अब वह वापस उसके मिशन पर आया। वह मेरे लिए बहुत आनंद के एहसास का विवरण करना मुश्किल है। उसने उस युवक लड़के को एयरपोर्ट से लिया। वह प्रभु के सामने उसकी पवित्र आत्मा, खुशी, आत्मविश्वास से भरा था। वह एक उत्तम प्रचारक बना और बाद में एक पति को मुझे उसके साथ उसकी मंदिर की सीलिंग में भाग होने का मौका मिला। इसी के परस्पर में एक और प्रचारक को जानती हूँ जिसने जानते हुए मिशन से पहले अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, यह सोच कर कि उसे निश्चित ही घर वापस भेज देंगे। उसने पत्नी अपनी योजना बनाई, थोड़ा अधिक मेहनत करने की आने मिशन के दौरान और मिशन अध्यक्ष से अपना मिशन खत्म होने के कुछ दिनों पहले उन्होंने पापों को स्वीकार किया। उसमें ईश्वरीय पीड़ा का भाग नहीं था और उसने हमारे प्रिय उद्धारकर्ता के द्वारा दी गई योजना को अस्वीकृत करने की कोशिश की। उसने मिशन के दौरान मैंने एक बार अपने पति के साथ युवक के 32वें के इंटरव्यू में गई। जब मेरे पति उसका इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने बाहर बहन प्रचारकों के साथ इंतजार किया जिन्होंने उसे पढ़ाया था। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब मेरे पति ने उन प्रचारकों को सूचित किया कि वह पुरुष बत्तीसवां ले सकते हैं। वह प्रिय व्यक्ति रोया और रोया यह समझाते हुए कि वह निश्चित इस था कि इस पर उसने कुछ ऐसे गंभीर पाप इस जीवन में किए हैं जिससे कि वह कभी 32वां नहीं ले पाएंगे। मैंने बहुत कम आनंद और खुशी को साक्षी किया था और अंधेरे से उजाले में आने को भी जो मैंने उस दिन देखा। एल्डर डी टॉड फिस्ट्रोफर्सन ने गवाही दी। विश्वास के साथ हमारे दयालु मुक्तिदाता और उसकी शक्ति निराशा की क्षमता को आशा में बदल देती है। एक कम मन और इच्छा बदलते हैं और एक आकर्षक पाप घिनौनापन बना जाता है। पश्चाताप का कोई भी मूल्य हो, क्षमा का आनंद उसे निगल लेता है। यह अनुभव में मुझे मॉर्मन की पुस्तक में इनोस की याद दिलाते हैं जो और मैंने अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना फिर एक ध्वनि को कहते हुए इनस तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और मैं इनस जानता था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसने मेरे अपराध धुल गए थे और मैंने कहा प्रभु यह कैसे हुआ। और उसने मुझसे कहा मसीह में तुम्हारे प्रेम के कारण जाओ, तुम्हारे विश्वास में तुम्हें चंगा किया। इन बातों को तैयार करते समय मैं एहसास करना चाहता था कि हमारे नाती पोते पश्चाताप के बारे में क्या समझते हैं और उद्धारकर्ता के बारे में कैसे महसूस करते हैं। तो मैंने अपने बच्चों से उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछने के लिए कहा। मुझे मेरे नाती पोतों के उत्तर छू गए। पश्चाताप क्या है? जब आप किसी को मारते हैं, आप सॉरी कहते हैं और उसकी मदद करते हैं। आपको कैसा लगता है जब आप पश्चाताप करते हैं? आप उसको महसूस करते हैं और उनके स्नेह को महसूस कर सकते हैं। आपको पश्चाताप क्यों करना है? मुझे खुशी होती है और बुरी भावनाएं चली जाती है। आप यीशु मसीह और स्वर्ग के पिता के बारे में कैसा महसूस कर सकते हैं और आप पश्चाताप करते हैं? मैं महसूस करता हूँ कि यीशु मसीह करते ही बलिदान देना योग्य था और वह खुशी है कि हम उनके साथ फिर से रह सकते हैं। क्यों यीशु और स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि मैं पश्चाताप करूं? अपनी 17 वर्षीय पोती के बारे शब्दों में क्यों वह मुझसे प्रेम करते हैं? प्रगति करने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए हमें पश्चाताप करना आवश्यक है। हम यह भी चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहे और इसलिए उसका उत्तम साथ पाने के लिए हमें प्रतिदिन पश्चाताप करना है। मैं उन्हें कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे कर सकती हूँ। जब 4 साल की ब्रेन ली ने यह प्रश्न को सुना, उसने कहा मैं नहीं जानती पिताजी, आप मुझे सिखाएं। पिछले महासम्मेलन में एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने घोषित किया किंतु आप यह सोचें कि आपको देर हो गई है। कितने भी मौके आप सोचें आपने खो दिए हैं, कितनी भी गलतियां आप सोचें आपने की हैं, या कितने भी दूर आप अपने घर और परिवार और परमेश्वर से चले गए हों, मैं गवाही देता हूँ कि आपने दिव्य प्रेम की पहचान के आगे यात्रा नहीं की है। आपके लिए संभव नहीं है मसीह के बलिदान से जो चमकती अनंत ज्योति से नीचे डूब जाना। ओह, मैं कितना चाहती हूँ कि मेरा हर एक बच्चा, नाती पोते और आप सब मेरे भाइयों और बहनें सब एक स्वर्ग आनंद और समीपता को महसूस करें जब हम प्रतिदिन अपने पापों और कमजोरियों का प्रश्चय करें। स्वर्गीय पिता के हर उत्तरदायी बच्चे को पश्चाताप की आवश्यकता है। हमें कौन से पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है? किसने हमें पकड़ के रखा है? किन मायनों में हमें सुधार की आवश्यकता है? मैं जानती हूँ मेरे अध्यक्ष पैकर ने अनुभव किया और गवाही कि हम विनम्रता से पश्चाताप करते हैं, हमारे पाप चले जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। मैंने निजी रूप से इस आनंद, आराम और आत्मविश्वास को प्रभु के सामने महसूस किया है जब मैंने विनम्रता से पश्चाताप किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार इस जीवन में लाल सागर का अलग होना, पहाड़ों का अपनी जगह से हिल जाना या शरीर का चंगा होना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हम नम्रता से अपने स्वर्गीय पिता को प्रार्थना में याद करते हैं, उत्साह से क्षमा मांगते हैं और फिर उद्धारकर्ता के बलिदान द्वारा उन पापों से स्वच्छ होते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
Brothers and sisters, on a signal from the conductor,
भाइयों और बहनों, संगीतकार के निर्देश पर कलीसिया खड़े होकर गाएगी I am a child of God। उनके पश्चात हम 12 की परिषद के एल्डर एम नसल बलराड को सुनेंगे। उनके पश्चात अध्यक्ष धर्मतक्ष जीन एम डेविस बोलेंगे। फिर उनके बाद 70 के अध्यक्षता के लिन जी रॉबिन्सन बोलेंगे। उनकी टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली माय हेवनली फादर लव्स मी गाएगी।
This is the 186th.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजे का 186वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन है।
Several years ago, my family and I visited.
कई सालों पहले मेरा परिवार और मैं पवित्र भूमि में घूमने गए थे। हमारी यात्रा की उज्जवल यादों में से एक यरूशलेम के ऊपर के कक्ष की थी, अंतिम भोज की संस्कृति स्थल। जैसे मैं उस स्थल पर खड़ा हुआ, मैंने यूहन्ना 17 में से पढ़ा, जहां पर यीशु अपने पिता से आग्रह अपने चेलों के लिए कर रहे थे। मैं उनके लिए विनती करता हूं, उनकी रक्षा की, वे हमारे समान एक हों। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इन वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों। मैं इन शब्दों की गंभीरता में बह गया और अपने आप को उस स्थान में प्रार्थना करते हुए पाया कि मैं कभी भी अपने परिवार से और मेरे स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र के साथ एक हो सकूंगा। हमारे अनमोल रिश्ते परिवारों, मित्रों, प्रभु और उसके पुनर्स्थापित सुसमाचार के साथ बातों के बीच जो कि जीवन में मायने रखते हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको पोषित, सुरक्षित और पालन पोषण करना चाहिए। उनमें से एक बहुत ही हृदय दुखदायी कहानी धर्मशास्त्रों में है, जब प्रभु के बहुत से शिष्यों को उसकी शिक्षा और सिद्धांत कठिन प्रतीत होते, उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। जैसे ही चेले चले गए, यीशु ने मुड़कर 12 से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। उस क्षण में जब अन्यों ने उस पर ध्यान दिया कि वे क्या ग्रहण नहीं कर सके, प्रेरितों ने केंद्रित कर चुना कि उन्होंने किस पर विश्वास किया और जाना, और उसके परिणाम स्वरूप वे मसीह के साथ ही रहेंगे। पश्चात पेंटिकॉस्ट के दिन 12 ने पवित्र आत्मा के उपहार प्राप्त किए। वे मसीह की गवाही में दिलेर बन गए और यीशु की शिक्षा और अधिक समझने लगे थे। आज भी कोई फर्क नहीं है, कुछ के लिए मसीह का निमंत्रण और बने रहने में या ग्रहण करने में कठिनाई होती है। कुछ शिष्यों को गिरजा की पॉलिसी या शिक्षा को समझने में संघर्ष करना पड़ता है, अन्यों को हमारे इतिहास में चिंता होती है, या कुछ सदस्यों और मार्गदर्शकों के अपूर्णता में अतीत में और वर्तमान में। अब भी कुछ को धर्म को जीने में कठिनाई होती है, जिसमें अधिक करने की जरूरत है। अंत में कुछ को अच्छा करने में घबराहट होती है। इन और दूसरे कारणों के लिए कुछ गिरजे के सदस्य अपने विश्वास में संदेह करने लगते हैं, चकित होते हैं यदि शायद भी उनका अनुसरण करना, उल्टे फिर गए और उसके बाद यीशु के साथ न चले। यदि आप में से कोई अपने में विश्वास से डगमगाता है, मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ जो पतरस ने पूछा, हम किसके पास जाएं? यदि आप सक्रिय नहीं रहना चुनाव करते हो, या पुनर्स्थापित यीशु मसीह के अंतिम दिन के संतों का गिरजा छोड़ना चाहते हो, तुम कहाँ जाओगे? तुम क्या करोगे? निर्णय नहीं गिरजे के सदस्यों और प्रभु के चुने मार्गदर्शकों के साथ चलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अभी से हमेशा के लिए दिखाई नहीं दे सका। यहाँ पर शायद कुछ नियम, कुछ पॉलिसी, कुछ थोड़ा इतिहास जो कि आपको आपके विश्वास के साथ अतुल्य हो और आप उसे महसूस कर सके, जो कि सिर्फ अंदरूनी खलबली को यहीं सुलझाने का तरीका अभी सही है। संतों के साथ नहीं चलने का, यदि आप जीते हैं कि जितना मैं जिया हूँ, आपके पास रास्ता है आप अपने में सुलझने का, एक प्रेरणा रखने या प्रकटीकरण की एक नई रोशनी पर विषय डालता है। याद रखें, पुनर्स्थापना एक घटना नहीं है, लेकिन ये लगातार खोलती जा रही है। कभी भी महान सच्चाई का परित्याग नहीं करना, भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ से प्रकट करवाता है। कभी भी पढ़ना, चिंतन और मॉर्मन की पुस्तक में मसीह के सिद्धांत के अपना नहीं छोड़ेंगे। कभी भी प्रभु को समान समय देने में असफल न हो, ईमानदारी से कोशिश करके समझें कि प्रभु क्या बतलाएगा। जैसे मेरे प्रिय दोस्तों और पूर्व साथी एल्डर नील ए मैक्सवेल ने एक बार कहा था, हमें कभी भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए जो कि सिर्फ कुछ आपके द्वारा समझाया न जा सके, ये समझाया नहीं जाता। ताकि पहले आप उस आत्मिक विपत्तिजनक चुनाव कर छोड़ें, मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि रुकें और ध्यान से सोचें छोड़ने की पूर्व कि क्या आपके लिए लाया गया था आपकी गवाही पुनर्स्थापित यीशु मसीह के गिरजे के पहले स्थान पर। रुकें और सोचें आपने यहां पर क्या महसूस किया था और आपने उसे क्यों महसूस किया। समय के बारे में सोचें जब पवित्र आत्मा ने आपको अनंत सच्चाई की गवाही दी थी। आप कहां जाकर दूसरों को ढूंढेंगे जिन्होंने आपके भरोसे का व्यक्तिगत तरह से बांटा। प्रिय स्वर्गीय अभिभावकों जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे उनकी अनंत उपस्थिति में लौटना है, आप कहां उद्धारकर्ता के बारे में सीखने के लिए जाएंगे जो आपका प्रिय मित्र है, जो सिर्फ आपके ही पापों के लिए नहीं सफर किया परंतु नाना प्रकार की पीड़ा दुख और प्रलोभन झेले ताकि मानव शरीर के अनुसार उसकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेगा, जिससे कि उसका प्याला दया से भर उठेगा और जिससे वो मानव शरीर की दुर्बलताओं के अनुसार अपने लोगों की सहायता कर सके। सम्मिलित है, मैं विश्वास करता हूँ दुर्बलताएं विश्वास को खोने की हैं। आप स्वर्गीय पिता की आनंद की योजना और शांति के बारे में अधिक सीखने के लिए और योजना जो कि अद्भुत संभावनाओं शिक्षाओं और हमारे नश्वर और अनंत जीवन के लिए मार्गदर्शन के साथ भर जाती है कहाँ जाएंगे। स्मरण रहे उद्धार की योजना नश्वर जीवन को अर्थ उद्देश्य और निदर्शन देती है। आप कहाँ जाएंगे विस्तार से जानने को और प्रेरित गिरजा संस्था के ढांचे को जानने के लिए जिसके द्वारा आपको सिखाया और पुरुषों और स्त्रियों द्वारा सहारा दिया गया जो गंभीरता से प्रभु की सेवा के द्वारा आप और आपके परिवार की सेवा करते हैं। आप कहाँ जाएंगे जीवित भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को खोजने को जिन्हें परमेश्वर द्वारा सलाह समझदारी सहायता और हमारे दिन की चुनौतियों के लिए प्रेरणा के लिए अन्य साधन पाने को। कहाँ जाएंगे आप लोगों को खोजने के लिए जो जीने के मूल्य और अस्त्र बनाते हैं कि आप बांटें और अपने बच्चों और पोती पोतों को आगे दें। आप कहाँ जाएंगे आप आनंद का अनुभव लेने जो कि बचाव धर्माविधियों और मंदिर में अनुबंधों से आते हैं। भाइयों और बहनों मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करना और जीना चुनौती भरा हो सकता है। ये हमेशा इस प्रकार किया गया है और ये कभी नहीं होगा। जीवन यात्रा की तरह रास्ता बीहड़ की तरफ कभी ऊपर और कभी नीचे होते रहते हैं। ये स्वाभाविक और साधारण बात है। अक्सर रास्तों को रोककर हमारी सांस रोक देता है। हमारी चीजों को दोबारा से गिने और अपनी गति पर दोबारा विचारें। हम किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है परंतु ऐसा करने में कोई बुरी बात नहीं है। अब आपको हालात की जरूरत हो। असल में एक संक्रात्मक बात है जिनके लिए जो अवसर का पूरा फायदा लेना अपने आप को तरोताजा कर मसीह के सुसमाचार के जीवित जल के साथ चाहती थी। खतरा आता है जब कोई भटक कर दूर जाने के रास्ते का चुनाव कर चला जाता है जो कि जीवन के पेड़ की ओर ले जाता है। कभी कभी हम सीखते हैं और अध्ययन करते हैं और जानते हैं और कभी कभी हमें विश्वास भरोसा और आशा कर सकते हैं। अंत में हम में से हर एक को उद्धारकर्ता के प्रश्न का जवाब देना होगा, क्या तुम भी चले जाओगे। हम सभी को अपना जवाब उस प्रश्न के लिए खुद तलाशना है। कुछ के लिए जवाब आसान है, अन्य के लिए ये कठिन है। मैं दावा कर जानना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कुछ के लिए दूसरों से विश्वास से भरोसा आसान लगता है। मैं बहुतों
का आभारी हूँ, ये जानकर कि उत्तर हमेशा वहाँ होता है और अगर हम उसे ढूंढते हैं, वास्तव में खोज असल इरादे के साथ और प्रार्थना से भरा हृदय पूरे उद्देश्य के साथ, हमें आखिरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता है, जैसे हम सुसमाचार के पथ पर जारी रहते हैं। मेरी सेविकाई में मैं उनको जानता हूँ जो कि निकल जाते हैं और उनकी विश्वास की परीक्षा के बाद लौट आते हैं। मेरी सच्ची आशा वो है कि हम परमेश्वर के बच्चों के क्रम को आमंत्रण देकर बढ़ाएंगे, सुसमाचार को खोजकर, और रुके तो वह भी अन्य सभी फलों से श्रेष्ठ इन फलों को खाने के भागीदार बनो। मेरा हार्दिक निवेदन है कि हम प्रोत्साहन, स्वीकृति, समझदारी और प्यार देंगे उनको जो अपने विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं। हमें अपने किसी भी भाइयों और बहनों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम सभी को भिन्न स्थानों पर रास्तों में रहना है और हमें एक दूसरे के अनुसार सेवा की जरूरत है। जैसे हमें अपने हाथों को खुला रखकर नए परिवर्तितों का स्वागत आत्मा से करना चाहिए, तो हमें गले से लगाना और सहारा देना उनको जिनके पास प्रश्न है और जो अपने विश्वास में डगमगाते हैं। दूसरे के सामान्य लक्षण का उपयोग करना, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी पुरानी नाव को छोड़कर जाएंगे जहाँ परमेश्वर और मसीह पतवार पर हैं, रोके और ध्यान से सोचे करने से पहले। कृपया जाने कि चाहे बड़ा आंधी तूफान आए और लहरें पुरानी नाव के ऊपर तक आए, हमेशा याद रखें कि उद्धारकर्ता उस पर है और तूफान को अपने आदेश से डांटता है। शांत रह, थम जा, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। हमारे विश्वास न डगमगाए और जाने कि आंधी और तूफान भी उसका पालन करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे प्रभु के नाम में वादा करता हूँ कि वो कभी भी अपने गिरजे का परित्याग नहीं करेगा और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। याद रखें, पत्रस ने उद्धारकर्ता के प्रश्न और शब्दों का उत्तर दिया था, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मैं गवाही देता हूँ कि सर्वशक्तिमान के प्रभु यीशु के नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम रास्ता या मुक्ति नहीं है जिसमें मानव वंश को मुक्ति प्राप्त हो सके। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को हमारे दिन में बुलाता है और पुनर्स्थापित उसके गिरजा की शिक्षाएं और आज्ञाएं जो कि तूफान और प्रकोप से पनाह लेती हैं, कि जब तक संसार के लोग वास्तव में पश्चाताप करेंगे और उसके पास लौट नहीं आते। मैं आगे गवाही देता हूं कि प्रभु उन सभी को अपने पास बुलाता है और अपनी इच्छाओं में भाग लेने को कहता है और अपने पास आने वालों में से किसी को भी अस्वीकार नहीं करता, चाहे वो काला हो, श्वेत हो, परतंत्र हो, स्वतंत्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, और सभी परमेश्वर के समान है। यीशु हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता है और उसका पुनः स्थापित सुसमाचार हमें सुरक्षा पूर्वक हमारे स्वर्गीय अभिभावकों की उपस्थिति में वापस लाएगा, यदि हमें सुसमाचार के पथ पर ही और उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, जिसकी मैं गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
One of the most remarkable and tender experiences recorded in सबसे
विशिष्ट और करुण अनुभव पवित्र धर्म शास्त्र में अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उद्धारकर्ता की अमेरिका के लोगों से भेंट का विलेखन है। लोग प्रभावित थे एक इतनी बड़ी तबाही से जिसने की पूरी पृथ्वी को कुरूप कर दिया। इस घटना के अभिलेख वर्णन करते हैं कि उस प्रलय के बाद लोग निरंतर रोए और इस गहरे दुख के बीच वे चंगाई, शांति और मुक्ति के लिए भूखे रहे। जब उद्धारकर्ता स्वर्ग से उतरे, लोग इनके पैर पर दो बार गिरे। पहला तब हुआ जब उन्होंने घोषणा की दिव्य अधिकार के साथ, देखो मैं यीशु मसीह हूँ, जिसके विषय में भविष्य वक्ताओं ने गवाही दी थी कि वह स्वर्ग से आएगा, और देखो मैं ही संसार की ज्योति और जीवन हूँ। उन्होंने फिर आमंत्रित किया उनको जो मौजूद थे, उठो और मेरे पास आओ, ताकि तुम अपने हाथों को मेरे बगल में डाल सको और मेरे हाथों और मेरे पैरों के कीलों के निशान को महसूस कर सको, ताकि तुम जान सको कि मैं ही इसराइल का परमेश्वर हूँ और पूरी पृथ्वी का परमेश्वर हूँ, और मैं संसार के पापों के लिए मारा गया था। और जब वे सारे लोगों ने जानकर स्वयं इसे देख लिया, यह कहते हुए वे एक स्वर में पुकारने लगे, होशाना, सर्वोच्च परमेश्वर का नाम धन्य हो। और फिर दूसरी बार वे यीशु के पैरों के पास गिर गए, परंतु इस बार एक उद्देश्य से कि हम सीखते हैं कि उन्होंने उसकी आराधना की। आज का दिन इस वर्ष के शुरुआत में एक कार्य के संबंध में एक स्टेट का दौरा करने पश्चिम संयुक्त राष्ट्र गया। वह एक साधारण सा रविवार था, एक साधारण सी सभा थी गिरजा के असाधारण से सदस्यों के साथ। मैंने लोगों की गिरजा में आते हुए और आदर से उपलब्ध सीटों पर खिसकते हुए देखा। अंतिम क्षण में फुसफुसाती बातें हाल में गूंजती गई। माताओं और पिताओं ने कोशिश की व्यर्थ में कभी कभी चुस्त बच्चों को शांत करने की असाधारण, परंतु इससे पहले की सभा शुरू हुई पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन मेरे मन में आए। ये सदस्य केवल अपना कार्य को पूरा करने या भाषण देने वाले को सुनने नहीं आए थे, वे एक गहरे और इससे कई अधिक महत्वपूर्ण कारण से आए थे। वे आराधना करने के लिए आए थे। जैसा ही सभा आगे बढ़ी, मैंने मंडली के विभिन्न सदस्यों को ध्यान से देखा। उन सबके स्वर्गीय भाव थे, एक आदर और शांति का रवैया था। उनके विषय में कुछ था जिसने मेरी आत्मा को हार्दिक कर दिया। उस रविवार जो अनुभव उन्होंने हो रहा था वह कुछ असाधारण सा था। वह आराधना कर रहे थे, वह स्वर्ग को अनुभव कर रहे थे, मैं उनके अनुग्रह से देख सकता था। और मैंने उनके साथ आनंद मनाया और आराधना की, और जब मैंने ऐसा किया आत्मा ने मेरे मन से कहा, और उस दिन मैंने अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में और अपने जीवन में सच्ची आराधना के विषय में कुछ सीखा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में आराधना अंतिम दिनों के संतिम असाधारण है। जब गिरजा घर की बुलावट से सेवा की बात आती है, परंतु कभी कभी हम अपने दैनिक कार्य नियमित तौर से कर रहे हों, जैसे कि हम केवल एक व्यवसायिक कार्य कर रहे हों, कभी कभी हमारी सभा की उपस्थिति और राज्य में सेवा आराधना के पवित्र तत्व में कमी कर देती है, और उसके बिना हम एक अतुल्य आत्मिक अत्यंत मुठभेड़ से चूक रहे हैं। एक शीर्षक जो हमें स्नेह स्वर्गीय पिता के बाद बचे होने का है, आकस्मिक होने से दूर हमारे आत्मिक जीवन के लिए आराधना आवश्यक और केंद्रीय है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें इच्छा करनी है, बाहर ढूंढना है और अनुभव के लिए प्रयास करना है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उनके समीप श्रद्धालु प्रेम नम्रता और आराधना से आते हैं। हम उनका धन्यवाद और उन्हें अपना श्रेष्ठ राजा, सृष्टि का रचयिता, हमारा प्रिय और बहुत ज्यादा स्नेह पिता स्वीकार करते हैं। हम उनका आदर और भय करते हैं। हम अपने मनों को प्रबल प्रार्थना से उठाते हैं, उनके वचनों को संजोते हैं, उनके अनुग्रह में आनंद मनाते हैं और वचनबद्ध उनके अनुयायी समर्पित निष्ठा के साथ बनते हैं। परमेश्वर की आराधना करना यीशु मसीह के प्रेरित के जीवन का एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि यदि वह उन्हें अपने मन में प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो हम उन्हें व्यर्थ ही अपने परिषद, गिरजाघर और मंदिरों में ढूंढते हैं। सच्चे हम
In the first part of the 19th century, the Christian world had all but abandoned.
19वीं शताब्दी के पहले भाग में मसीही समुदाय ने इस विचार को त्याग दिया था कि परमेश्वर अभी भी मनुष्य से बात करते हैं। परंतु 1820 की बिहार में यह सब बदल गया, जब एक विनम्र खेतों में पला लड़का पेड़ों की वाटिका में दाखिल हुआ और घुटनों पर हो उसने प्रार्थना की। उस दिन से एक दिव्य दर्शी प्रकटीकरण और स्वर्गीय दर्शनों की असाधारण धारा ने पृथ्वी को स्नान दिया है। अपने निवासियों को परमेश्वर के प्राकृतिक और उद्देश्य का और मनुष्य को उनसे रिश्तों का बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करके। ऑलिवर के वचन पहले तथ्य को सूचित करते हैं जो दिव्य की सच्ची आराधना के साथ हैं, एक सदु प्रतापी आदर और परम धन्यवाद ज्ञापन। प्रतिदिन परंतु खासतौर से सब्बात दिन को हमें एक असाधारण अवसर आश्चर्य और भय का स्वर्ग का अनुभव प्राप्त होता है और परमेश्वर के लिए अपनी प्रशंसा उनकी आशीषित इच्छाइयाँ और अधिक दया के लिए देना है। ये हमें आशा की ओर ले जाता है। यह आराधना के पहले तथ्य है। पेंटेकोस्ट के आशीषित दिन में पवित्र आत्मा मसीह के लिए प्रेरित मस्तिष्क और मनों में प्रवेश कर गया, उन्हें ज्योति और ज्ञान से भर दिया। उस दिन ऐसा समय था जब वे अनिश्चित होते थे कि क्या करना है। उद्धारकर्ता के अन्यायों के लिए यरूशलेम एक खतरनाक जगह थी और उन्होंने सोचा होगा कि उनका क्या बन जाएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा उनके मन में भर गया, शक और अरुचि गायब हो जाते हैं। सच्ची आराधना के उत्तम अनुभव द्वारा परमेश्वर के संतों ने स्वर्गीय ज्योति, ज्ञान और एक शक्तिशाली गवाही प्राप्त की जो विश्वास की ओर ले गई। उस क्षण से प्रेरितों और संतों वे दृढ़ निर्देश के साथ, इस साहस के साथ वे मसीह यीशु का प्रचार संसार भर में करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में आराधना करते हैं, हम प्रकाश और सच को अपने मन में आमंत्रित करते हैं। यह दो आवश्यक तथ्य हैं। सच्ची आराधना है। मॉर्मन के पुस्तक में हम उस क्षण को सीखते हैं जब आलमा छोटे को उसकी अपने अखंडपन के नतीजों की पीड़ा से स्वतंत्र किया गया। वह फिर से वैसा नहीं था। उन्होंने साहस से और उन्होंने पूरे जरा हमला प्रदेश में और उन सभी लोगों के बीच गिरजों के पहुंचाए हानि को उत्साहपूर्वक ठीक करने का प्रयास करते हुए उनकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से निरंतर आराधना ने एक शक्तिशाली प्रेरित का रूप ले लिया। सच्ची आराधना हमें प्रिय प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ईमानदार और उत्साही प्रेरितों में परिवर्तित करती है। हम बदल जाते हैं कि उसकी तरह बनते हैं। हम और भी समझदार और देखभाल वाले बन जाते हैं, अधिक क्षमाशील, अधिक प्रिय। हम समझते हैं कि यह कहना असंभव है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जबकि उसी समय पर दूसरे जो हमारी चारों ओर हैं उनसे नफरत, खारिज या अनादर करते हैं। सच्ची आराधना प्रेरित के मार्ग पर चलने की एक अटल दृढ़ता की ओर ले जाती है और वह निसंदेह प्रेम की ओर ले जाती है। यह दो आवश्यक तथ्य है सच्ची आराधना के। जब मैं पीछे देखता हूँ तो जो एक साधारण परिवार की सुबह, एक साधारण सभाघर में साधारण से स्टेक और आज मैं असाधारण आत्मिक अनुभव से प्रभावित हूँ जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए आशीषित करेगा। मैंने यह भी सीखा कि यदि हम अपने समय के बुलाहट और कार्यों के विशिष्ट प्रबंधक हैं, चाहे हम अपनी सूची पर सारे डब्बों में संपूर्ण व्यक्ति, परिवार या अध्यक्ष पर सही का निशाना लगाएं, यदि हम अपने दयालु मुक्तिदाता, स्वर्गीय राजा और कृपालु परमेश्वर की आराधना करने में असफल हैं, तो हम सुसमाचार का बहुत सा आनंद और शांति खो रहे हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हम उन्हें स्वीकार और प्राप्त उसी शांति से करते हैं जैसे अमेरिका के प्राचीन लोगों ने किया था। हम उनमें आश्चर्य और आदर के अचितनीय एहसास से प्रवेश करते हैं। हम परमेश्वर की अच्छाई में आभार में अचंभित होते हैं और ऐसे हम आशा को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं जो हमारी आत्मा को ज्योति और सच से भर देता है। हम आत्मिक दृश्य को सम्मिलित करते हैं जो कि पवित्र आत्मा की ज्योति द्वारा ही देखा जा सकता है और ऐसे हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम आराधना करते हैं, हमारी आत्मा निर्मल होती है और हम अपने प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के कदमों पर चलने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, हमारे मन आशीषित परमेश्वर की महिमा में सुबह, शाम और रात में उमड़ पड़ते हैं। हम निरंतर उन्हें पवित्र और आदर देते हैं अपने सभा घरों में, घर, मंदिर और अपने कार्य में। जब हम आराधना करते हैं, हम अपने मनों को यीशु मसीह के बलिदान से चंगाई पाने के लिए खोलते हैं। हमारा जीवन हमारी आराधना का प्रतीक और भाव बन जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक अनुभवों का इससे कुछ कम लेना देना है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, और उस सब से लेना देना है कि हमारे मनो में क्या हो रहा है। यह मेरी गवाही है कि सच्ची आराधना साधारण गिरजा की सभा को एक विशेष आत्मिक भोज में बदल सकती है। यह हमारे जीवन को धनी करती है, हमारी समझ को बड़ा करती है और हमारी गवाहियों को मजबूत करती है, जैसे कि हम अपने मनन को परमेश्वर की ओर झुकाते हैं। प्राचीन भजन बनाने वाला, हम उसके फटकों से धन्यवाद और उसकी आंगनों में स्तुति, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्य कहो। वास्तविक और हार्दिक आराधना द्वारा हम आशा, विश्वास और उदारता में विकसित और बड़े होते हैं, और इसी प्रक्रिया द्वारा हम स्वर्गीय ज्योति को अपनी आत्मा में इकट्ठा करते हैं, जो हमारे जीवन को दिव्य अर्थ, शांति, स्थ आनंद से उल्लेखित करती है। यह आशीष आराधना की हमारे जीवन में उनकी विनम्रता से यह गवाही यीशु मसीह के पवित्र नाम में देता है, आमीन।
नाश्वर जीवन में यीशु मसीह प्यार, न्याय और असाधारण बुद्धिमान और धैर्यवान था। धर्मशास्त्र में उसे नेक न्याय के रूप में जाना जाता है और उसकी सलाह हमें करने के लिए भी है। न्याय का नेयक से न्याय करना, ट्रांसलेशन जो कि अच्छा करने की और नेकता से न्याय करता है, हमारी सहायता न्याय करने में करता है। जैसे वह कहता है, वह निफाइटी को सलाह देता है और तुम यह समझो कि जो न्याय पद्धति में तुम्हें दूंगा, जो कि उचित होगी, उसी के अनुसार तुम इन लोगों के न्याय करता होगा। इससे तुम्हें किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरी तरह अधर्मी न्याय, एक शर्मनाक उदाहरण अधर्मी निर्णय, खोई हुई भेंट से दृष्टांत आता है। जब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने कर दोनों उद्घट और उनका रात्रि भोज की शादी से कहने लगे कि यह पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। असलियता से बेखबर कि वे खुद भी पापी हैं, आधीन हृदय की निंदा की फारसी और शास्त्री कभी नहीं जान पाए। कोई भी भेड़ को बचाने के आनंद को, ये भी फारसी और शास्त्री थे जो एक स्त्री को लाए जो अभ्याचार में पकड़ी गई। उद्धारकर्ता देखे कि वह उसका न्याय मूसा के न्यायानुसार करेगा। आप बाकी कहानी को जानते हैं, कैसे उसके निम्रता से उसके अधर्मी न्याय को और कैसे वे अपने स्वयं के अंतरात्मा से दोषी होने के द्वारा और एक के बाद एक निकाल गए। उसने फिर स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। और स्त्री ने उसी घंटे से परमेश्वर की महिमा की और उसके नाम में विश्वास किया। प्रकृति पुरुष और स्त्री, हम में से एक दूसरे को दूसरों की निंदा करने की आदत होती है। और अधर्मिकता से निर्णय होना या स्वयं नेक होना, यह यहाँ तक याकूब या यूहन्ना तो उद्धारकर्ता के प्रेरितों के साथ भी हुआ था। वे क्रोधित हुए जब समारियों गांव के उद्धारकर्ता का अनादर किया। यह देखकर उन्होंने कहा, प्रभु क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे, जिसे इलियास ने लिखा था। परंतु फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। आज का साधारण न्याय ऐसी कोई सामान्य निंदा का असर को नकारात्मक है, जैसे याकूब यूहन्ना ने उस अवसर पर किया था। एक योग्य न्याय कृपया के साथ स्वीकार करके समझाता है, एक पापी युवक उदाहरण के लिए बिशप के ऑफिस से चला गया, उद्धारकर्ता के प्रेम की अनुभूति के साथ विपश बिशप द्वारा और आनंद को अपने में लेकर और प्रायश्चित की चंगाई की समर्था से कभी शर्म नहीं की या अपमान में पकड़ा न गया, वरना बिशप अनजाने में कोई भी भेड़ को आगे विराने में खोजने न जाता। अनुशान, इसलिए करुणा कभी शिष्यों की जरूरत को निर्थक नहीं करती है। शब्द डिसिप्लिन, शब्द लैटिन शब्द डिस्केरी सीखना या डिसिप्लियस सीखने वाला से आता है। शिष्य को एक शास्त्र और अनुसरण कर सके वाला बनने, प्रभु के शिष्यता के मार्ग में प्रेम और धैर्य से शिक्षा दे। धर्मशास्त्रों में प्रभु अनुशासित शब्द को अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब शिष्यों के लिए बोलता है। चेस्टन शब्द लैटिन में केस्टस से आता है, का मतलब विशुद्ध या अशुद्ध और संयन से शुद्धता है। संसार में यह पृथ्वी पर न्याय जो कि आदमी की निंदा कर जेल में कैद कर डालते हैं, विपत्ति में मॉर्मन की पुस्तक हमें सिखाती कि हम इच्छा अनुसार पाप करते हैं, हम अपने खुद के न्यायी बन जाते हैं और अपने आप को आत्मिक कैद खाने में डाल देते हैं। विडंबना यहाँ पर साधारण न्याय के पास कैद खाने के कैद के खोलते हैं, क्योंकि ताड़ना के साथ मैंने छुटकारा पाने के लिए रास्ता तैयार किया। सभी बातों में प्रलोभन से परे इस कार्यवाही में साधारण न्याय, दयालु प्रिय और विमोचन है, ना ही निंदा करने वाला। जोसेफ में 4 साल की परख के साथ अधीन थे, स्वर्ण पट्टियों के प्राप्ति से पहले, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया था। बाद में जब जोसेफ ने 116 हस्तलिपि पन्ने खो दिए, वह फिर से दमन के अधीन हो गया था। हालांकि वह सच में पश्चातापी हो गया, उसके अवसर को थोड़ा समय के लिए ले लिया गया था, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे ताड़ना भी उसके पापों की क्षमा को माफ किया जा सकता है। जोसेफ कहता है, दूत आनंदित हुए थे जब उन्होंने मुझे यूरियम अंथम्बिन वापिस दे दिया और कहा कि प्रार्थना परमेश्वर मेरे आज्ञाकारी और विनम्रता से प्रसन्न है और मुझे मेरे पछतावे के लिए प्रेम करता है। अब प्रार्थना में परिश्रम करने पर, क्योंकि प्रभु चाहता था जोसेफ को हृदय बदलाव कर सबक सीखने को, उसे उसकी खोज ना जनक बलिदान की आवश्यकता है। बलिदान एक विशेष आत्मसमय का भाग है। प्राचीन दिनों में बलिदान का अर्थ किसी चीज का या किसी को पवित्र मानना ना था, उससे जोड़ना, अन्याय पर किसी प्रकार से आश्रित होना, ताड़ना शब्द की परिभाषा शुद्धता। उसी तरह प्राचीन इसराइल में पाप या उल्लंघन करने से क्षमादान बलिदान आता है। बलिदान न सिर्फ उस महान और अंतिम बलिदान की ओर इशारा करता है आलमा, परंतु उद्धारकर्ता से प्रायश्चित के लिए आभार का गंभीर एहसास उत्पन्न करता है। एक अनिच्छा का बलिदान, जैसे हमारे पश्चाताप का मजाक करना, या उसके महान बलिदान के समान पाप के लिए और उस यातनाओं को महत्वहीन न बना देना, अकृता का एक कठोर चिन्ह है। और दूसरी तरफ से एक मधु विडंबना बलिदान की हर सच में कुछ अनंत महत्व से लाभ लेते हैं। इसकी दया और क्षमादान और आखिरकार सब कुछ जो पिता का है, जैसे पश्चाताप प्रक्रिया का भाग में बलिदान की चंगाई का मलब के रूप में काम किया करता है, बदलने में मदद करता है। पश्चाताप की अंतरात्मा के साथ शांति की अंतरात्मा है। बलिदान के बिना एक व्यक्ति के लिए उसने अपने आप को माफ करना कठिन होता है, अंतरात्मा का विलोभन कर रोक पाने के लिए। अभिभावक एक योग्य न्याय के रूप में, जो कि हम में से कुछ की साधारण न्याय कहा जाएगा। योग्यता का न्याय का नियम हम सब पर लागू होगा, विशेषकर अभिभावक पर, जो जिनके पास खोज इस नियम को इस्तेमाल करना अवसर होता है। प्रभावित कर बच्चों को सिखाना अच्छे अभिभावक होने का स्वाद होता है, और प्रियतमा अनुशासन का शब्द योग्य न्याय बनना होता है। अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ ने सिखाया था, यदि बच्चे निडर और असंतुलन करने में चिड़चिड़ाते हैं, उसके साथ एक शांत रहे जबकर उन्हें प्रेम से ना जीता जाए, और जब चाहे वैसे उनको ढाल सकते हैं। यह गहराई पहुँच जाना शिक्षा में है। जैसे अनुशासित करे भविष्यवक्ता हमेशा मसीह के गुणों का संदर्भ करते हैं। सिद्धांत और अनुबंध हमें दिए गए अच्छा अनुसार का सलाह देने का दिया गया है। कोई समर्थ या प्रभाव प्रोहित के सदाचार को बनाए रखने के लिए प्रकट करने चाहते हैं। प्रोत्साहन हमें आरा लंबी पीड़ा द्वारा, कोमलता विनम्रता द्वारा और प्रेम के निश्चित करता है, करुणा द्वारा और शुद्ध ज्ञान जो कि आत्मा को बढ़कर बिना छल और बिना कपट के, ठीक समय पर आलोचना के साथ तीखेपन में, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते हुए और फिर प्रेम की सीमा में बढ़ते हैं। यह धर्मशास्त्र हमें सिखाता है, जब पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं, न कि जब क्रोध के द्वारा बढ़ना है। पवित्र आत्मा और क्रोध बेमेल है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जिसके पास मतभेद की आत्मा है वह मेरा नहीं है, परंतु शैतान का है, जो कि सारे मतभेदों का पिता है। और वह लोगों के हृदय को क्रोध में, जॉर्ज एल्बर्ट स्मिथ शिक्षा देते हैं कि निष्ठुर चीजें हमेशा से नहीं प्रभु की प्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रभु का आत्मा एक अच्छी आत्मा है और यह एक धैर्य का आत्मा है। यह एक उदारता और प्रेम और सराहने की एक लंबी पीड़ा की आत्मा है। लेकिन यदि हमारे पास गलती ढूंढने की आत्मा है, नाश करने की तरह है, जो कभी नहीं आएगा, स्वर्ग पिता के सहयोगी की आत्मा की तरह और हमेशा खतरनाक होगा। दयालुता सामर्थ्य है जिसे परमेश्वर ने हमें दी है, कठोर हृदय की कठोरता को खोलने की, जिन आत्माओं को जीतने के लिए। जब उद्धारकर्ता नेफी ने से मिलने गया, उसने कुछ विचित्र बच्चों के साथ किया था और ऐसा हुआ कि भीड़ की जिन संतानों के विषय में बताया था, उसने उसकी जबानों खोला और उन्होंने अपने पिता को महान और अद्भुत बातों के विषय में बताया और यहाँ तक कि शिशुओं ने भी अपना बहुमूल्य अद्भुत बातों को बताया। शायद एक छोटे बच्चे ने मुंह खोलने से अधिक प्रभु आंखें और कामों को उनके अभिभावकों के लिए खोला गया है। उन अभिभावकों को अनंतता एक छलक दिखाकर अद्भुत उपहार देता है और उसके शब्द बच्चों के पूरे जीवन के स्तर की पहचान की सच्चाई दिखाता है। क्या यह हमेशा का बदलाव नहीं है? अभिभावकों को अपने बच्चों को देखने के और व्यवहार करने के तरीके का मुझे विभिन्न का एक आमीन।
We are indeed grateful for the to the
Manohar Sangeet ke liye hum Mormon Mandap Gayak Mandali ka aaj dhanyawad dena chahenge aaj subah jo unhone prastut kiya. Our concluding speaker for this session will is satr ke hamare antim vartakar adhyaksh Henry B. Eyring pratham adhyakshta ke pratham salahkar honge. आयरिंग अध्यक्ष आयरिंग की टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन कम ई थैंकफुल पीपल गाकर करेगी। समापन प्रार्थना उसके बाद भाई डेविन जी डोरंट रविवार विद्यालय के जनरल अध्यक्षता में पहले सलाहकार द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष आयरिंग
My dear brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर में पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, मैं आभारी हूं कि अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने मुझे इस सम्मेलन में सबत के दिन के लिए बोलने को कहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को आपके हृदय तक पहुंचाएगी। आज मैं हृदय की भावनाओं के बारे में बोलने की इच्छा करता हूं। मैं आभार पर आज केंद्रित करूंगा, विशेष रूप से सबत दिन के। हम बहुत सी चीजों के लिए आभार का एहसास करते हैं। दयालुता एक अजनबी से, एक समय का भोजन जब हम भूखे होते हैं, हमारे सिर पर एक सूखी छत जब तूफान आता है, एक टूटी हुई हड्डी जो ठीक हो जाती है, और एक नवजात शिशु का हृदय से रोना। हम में से बहुत से याद करेंगे ऐसे क्षणों में आभार का एहसास होना। अंतिम दिनों के संतों के लिए सबत का दिन एक क्षण है, खास करके आभार और प्रेम का दिन। प्रभु ने संतों को जैक्सन काउंटी मिसौरी 1831 में यह निर्देश दिए थे कि उनकी प्रार्थना और धन्यवाद स्वर्ग की ओर निर्देशित की जानी चाहिए। पहले के संतों को प्रकटीकरण दिया गया था सबत के दिन को कैसे रखना चाहिए और उपवास तथा प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। प्रभु ने उन्हें और हमें यह बताया है कि हमें किस तरह से सबत पर आराधना और धन्यवाद देना चाहिए। हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मायने यह बात रखता है कि हम उपहारों के दाता के बारे में किस तरह का प्रेम महसूस करते हैं। यह प्रभु के शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें धन्यवाद देना और कैसे सबत के दिन का प्रेम करना है। मैं उनको एक आज्ञा देता हूं कि इस प्रकार से कहते हुए, तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे बल, सारे और अपनी सारी बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम रखो, और यही यीशु मसीह के नाम में तुम उनकी सेवा करो। तुम अपने प्रभु परमेश्वर का ध्यान हर चीज में करोगे। तुम अपने प्रभु परमेश्वर का धार्मिकता में बलिदान अर्पण करोगे, यहां तक कि एक टूटे हुए हृदय और पश्चातापी आत्मा की। और फिर प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, परमेश्वर और यीशु मसीह को हमें को प्रेम और सराहना देने की असफलता के लिए जो उपहारों को देने वाले हैं। और कई बार यहाँ चीज में मनुष्य परमेश्वर की कष्ट नहीं पहुंचता। आप में से बहुत जो सुन रहे हैं पहले से ही सबत के दिन का आनंद लेते हैं, एक ऐसे दिन के रूप में जब हम याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए। आपको यह परिचित गीत याद होगा, When upon life billows you are tempted toast, When your life billows you are tempted toast, When you are discouraged thinking all is lost, When you are discouraged thinking all is lost, Count your many blessings, name them one by one, Count your many blessings, name them one by one, And it will surprise you what the Lord will has done. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessing. Every doubt will fly and you will be singing as the days goes by. मुझे वफादार अंतिम दिनों के संतों से पत्र और दर्शक मिलते हैं जो भोज महसूस करते हैं चिंता के भार का, कुछ नजदीक होते हैं उसे महसूस करने में, कम से कम उनके लिए अब सब खो चुका होता है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जो मैं कहूंगा वह मददगार होगा संदेह और उड़ाने के लिए और आपके हृदयों में गायन शुरू करने के लिए। पहली आशीष जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं वह यह है कि हम प्रभु भोज सभा में किसी भी तरह से उपस्थित हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने घर के असमर्थ हैं बिस्तर पर से उठने के लिए, वह कुछ है जहाँ वह होना चाहते हैं, जहाँ हम हैं, परंतु वे अस्पतालों में सेवा कर रहे हैं और सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह अपनी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी रेगिस्तान या जंगल में हैं। सिर्फ यह हकीकत कि आप भी एक अन्य संत के साथ हो सकते हैं और प्रभु भोज के में हिस्सा ले सकते हैं काफी है। आपको परमेश्वर की दयालुता के प्रति आभार और प्रेम महसूस करने के लिए भविष्यता जोसेफ स्मिथ और पुनर्स्थापित सुसमाचार के कारण एक और आशीष जिसे हम गिन सकते हैं वे यह है कि हम पर हमें हर हफ्ते प्रभु भोज ले सकते हैं। त्यार आशीष शित और परमेश्वर के अधिकृत सेवकों द्वारा लेने का अवसर दिया जाता है। हम आभारी हो सकते हैं जब पवित्र आत्मा पुष्टि करता है कि प्रभु भोज के प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता सम्मानित करते हैं और जो विनम्र प्रोहित्य धारकों द्वारा पेशकश किया जाता है। वे सब आशीष है जिसे हम गिन सकते हैं। उनमें से सबसे महान क्षमा का एहसास है जो अब आता है, वो तब आता है जब हम प्रभु भोज को लेते हैं। हम उद्धारकर्ता का महान प्रेम और आभार महसूस कर सकते हैं जिसका अनंत बलिदान पापों के से हमारा स्वच्छ होना संभव करता है। हम ब्रेड और पानी को लेते हैं, हम याद करते हैं कि उसने हमारे लिए दुख उठाया है और हमारे लिए जो उन्होंने किया है उसका आभार महसूस होता है। हम उनके प्रेम को अपने लिए और हमारा प्रेम उनके लिए महसूस करते हैं। प्रेम की आशीष जो हमें प्राप्त होती है वह आज्ञाओं का पालन करने के लिए आसान कर देती है। हमेशा उसे ध्यान रखें। आपको प्रेम और आभार महसूस होगा जैसे मुझे होता है। पवित्र आत्मा के लिए हमारे साथ हमेशा रखने के लिए स्वर्गीय पिता ने वादा किया है। जब हम अनुबंधों के प्रति विश्वसनीय रहेंगे जो हमने बनाए हैं, हम उन सब आशीषों के हर रविवार गिन सकते हैं और आभार का एहसास कर सकते हैं। सबत एक उत्तम समय भी है उस अनुबंध को याद करने के लिए जो हमने बपतिस्मे के दिन में लिया था। स्वर्गीय पिता के सभी बच्चों को प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उस वादे को पूरा करने में शामिल हो सकता है। आपका एक कक्षा या परिषद में भाग लेना आपके हृदय के पूरे उद्देश्य से, ताकि विश्वास से प्रेम का निर्माण आपके भाइयों और बहनों के बीच हो सकते हैं। उस वादे में खुशी और हमारी बुलाहट को पूरा करना भी शामिल है। मैं उन रविवार को याद करता हूं जब मैं डीकन परिषद में ब्यूटीफुल यूटा में पढ़ता था और साथ में मेरा रविवार विद्यालय की कक्षा आइडहो में। मुझे याद है कि उस वक्त जब मैंने अपनी पत्नी का सहायक बनकर नर्सरी में सेवा करी, जब मेरा मुख्य कार्य खिलौनों को उठाकर और बांटना था। कुछ वर्ष पूर्व मैंने आत्मा के द्वारा यह पहचाना कि मेरी साधारण सेवा स्वर्गीय पिता के बच्चों के जिंदगियों में अहमियत रखती है। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कुछ ने मुझे याद रखा और धन्यवाद दिया। मेरी उनकी सेवा करने के अनुभवहीन प्रयास के उन सबत दिन के स्वामी के लिए, जैसे कि हम कभी कभी अपनी सेवा का परिणाम सबत पर नहीं देख सकते। हम संचित प्रभाव दूसरे प्रभु को सेवकों का नहीं देख सकते, परंतु प्रभु अपना राज्य चुपचाप बना रहा है उसने अपने विश्वसनीय और विन चरवाहों के साथ, थोड़े धूमधाम के साथ उनके हजारों महान हजार वर्ष के विषय में उनका बढ़ता वैभव देखने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैं न्यू जर्सी की छोटी सी शाखा के में कुछ सदस्यों और एक परिवार मेरे अपनों के साथ प्रभु समस्याओं में जाकर बड़ा हुआ। 70 वर्ष पूर्व मेरा बपतिस्मा केवल एक गिरजा घर द्वारा बना पेंसिल्वेनिया में न्यू जर्सी के गिरजाघर में हुआ, परंतु वह जहाँ प्रिस्टन न्यू जर्सी में एक छोटी सी शाखा हुआ करती थी, वहाँ आज दो बड़े वार्ड्स हैं। और कुछ दिन पहले हजारों युवाओं ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के मंदिर के समर्पण पर पूर्वगत समारोह में प्रदर्शन किया। एक युवा हो मुझे जिला प्रचारक के तौर पर न्यूयॉर्क मस्को में बुलाया गया। आज वहाँ पर मंदिर है और कई स्टेक्स हैं। मैंने वह एक गिरजा था और जिला जो मैनचेस्टर और हार्डे आइलैंड के बीच काफी खिंचा हुआ था। मैं उसी काउंटी की सुंदर पहाड़ियों से गाड़ी चलाता हुआ छोटी शाखाओं के प्रभु भोज की सभाओं में जाता था। ज्यादातर जो किराए की सुविधाएं या फिर से बने घर थे। आज वह बेमेंटो के में एक परमेश्वर का मंदिर है जो मैं स्पष्ट रूप से तब नहीं देख पा रहा था। वह यह था कि प्रभु अपनी आत्मा उन लोगों पर उड़ेल रहे हैं जो उन प्रभु भोज सभाओं में थे। मैं महसूस कर सकता था प्रभु ने अपनी सीमा और समय का इरादा नहीं देख पा रहा था उनके राज्य का निर्माण और महिमा के लिए। एक भविष्यवक्ता ने प्रतिकरण द्वारा देखा और अभिलिखित किया जो हम गौर करते हैं। नफी ने कहा था कि हमारी कुल संख्या कभी भी महान नहीं होगी परंतु संचित रोशनी एक दर्शन है देखने के लिए। इस व्यवस्था में एक समान भविष्यवाणी का वर्णन हमारी परिस्थिति और अवसरों पर का दिया गया है जो हमारे आगे हैं। सिद्धांत और अनुबंध में तुम अभी तक पिता की महान आशीषों को नहीं समझे हो जो उनके हाथों ने तुम्हारे लिए तैयार की हैं और तुम सब का भोज नहीं उठाओगे। हर्षित रहो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। राज्य तुम्हारा है और उसकी आशीषें भी तुम्हारी हैं और अनंत में धन भी तुम्हारे हैं। मैं जो चीजों को धन्यवाद से प्राप्त करेगा और उसकी महिमा होगी और इसी पृथ्वी की वस्तुएं उसे दे दी जाएंगी 100 भेड़ से अधिक है। मैं उस परिवर्तन को महसूस किया है जो बढ़ते आभार के साथ आशीषों और परमेश्वर के प्रेम के लिए आता है जो सभी जगह गिरजाघर में बढ़ रहा है। ऐसे लगता है यहाँ तेजी से गिरजाघर के सदस्यों के बीच बढ़ रहा है। उस वक्त जो और जगह के लिए जहाँ विश्वास का इस्तेमाल इम्तहान है जहाँ उनको परमेश्वर से मदद के लिए निवेदन करना पड़ता है यहाँ तक कि आगे बढ़ने के लिए जिस वक्त से हम गुजरने उन्हें उसमें कठोर इम्तिहान होंगे और कि आलमा के लोगों के लिए यह दुष्ट अमिलोन के अधीन जिसने उनके पीठों पर भार रखे थे जो उनके लिए बहुत भारी से थे और उस बोझ को हल्का करूंगा और तुम्हारे कंधों पर लादा जाता है कि गुलामी के होते हुए भी तुम इन्हें अपनी पीठ पर महसूस नहीं करोगे और यह मैं इसलिए नहीं करूंगा तुम इसके पश्चाताप मेरे लिए गवाह बन कर खड़े हो सको कि तुम जान सको कि मैं प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के प्रसिद्ध आपके कष्टों के समय भेंट करूंगा। और ऐसा हुआ कि जो बोझ आलमा और उसके भाइयों के ऊपर लादे जाते थे हल्के हो गए। हाँ, प्रभु ने उन्हें शक्ति दी गई और बोझों को सरलता से साथ धो ले और आनंद पूर्वक और धैर्य से प्रभु की सभी इच्छाओं के अधीन हो गए। और मैं गवाह हैं कि जब भी हमें प्रभु के अनुबंधों को रखा है विशेषकर से जो कठिन है उन्होंने हमारी धन्यवाद की प्रार्थना सुनी है उनके लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है और शक्ति के साथ उस वफादारी रहने की प्रार्थना जवाब दिया है। एक बार से ज्यादा उन्होंने आपको प्रसन्न किया है और साथ में मजबूत बनाया है। आप यह अच्छी तरह से आश्चर्य करेंगे कि आप इस संपूर्ण सख्त के दिन को कैसे जी सकते हैं और आराधना कर सकते हैं अपना आभार प्रदर्शित करने के लिए और आपके अपने आप को और दूसरों को मजबूत करने के लिए इस उन इम्तिहानों के लिए जो आगे की ओर हैं। अगर आप शुरुआत कर सकते हैं निजी और धन्यवाद की पारिवारिक प्रार्थना कर और के उस सब के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है आप प्रार्थना कर सकते हैं ये जानने के लिए कि प्रभु आपने अपनी और दूसरों की सेवा करने के लिए क्या करना चाहते हैं। विशेष रूप से आप प्रार्थना कर सकते हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए जो आपको किसी के बारे में जो अकेला या जरूरतमंद हो बता सके, जिसके पास प्रभु चाहते हो कि आप जाएं। मैं आपसे वादा करता सकता हूं कि उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा और आप कार्य करेंगे उन जवाबों पर जिसे आप प्राप्त करेंगे। आपको सबत की खुशी मिलेगी और अपने हृदय में प्रसन्नता महसूस होगी। मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपको जानते हैं, एयर आपसे प्यार करते हैं, उद्धारकर्ता ने आपके लिए हर्जाना दिया है, वह आपका नाम जानते हैं जैसे कि वे भविष्यवक्ता जोसेफ का नाम जानते थे जब वे उन्होंने दिखाई दिए थे। मैं इस तरह से गवाही देता हूं कि यह यीशु मसीह का गिरजा है और वह उन अनुबंधों का सम्मान करेंगे जो उन्होंने उन आपके साथ बनाए हैं।
You will be fortified against the temptation and against feelings of doubt about the truth. You will find joy.
और मैं वादा करता हूं कि आपकी प्रार्थना कि आप उनके जैसे बन पाओगे। मैं इस तरह गवाही देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Our Heavenly Father, we love Thee.
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं. हम आभारी हैं उन संदेशों के लिए जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया सुंदर संगीत के लिए इस सत्र के. जो भी हमें सिखाया गया उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं. हम जीवित भविष्यवक्ता के लिए थॉमस एस मॉन्सन के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं. हम उनसे प्रेम करते हैं. हम हमेशा उसके साथ खड़े होंगे ताकि वह हमारे लव प्रेम और शामिल कर सके. हम आपके पुत्र यीशु मसीह पर अपार करते हैं उनके जीवन के लिए, उनकी सेविकाई के लिए, उनके संदेश, उनके आनंद के संदेश के लिए, उनके बलिदान के लिए जो हम सबको आशीष करता है कई तरीके से. हम उसको हमेशा याद रखें. हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के. आमीन.
This has been a broadcast of the 100.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 186वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन था. इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए थे. वक्ताओं ने संबोधन किया. संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा दिया गया था. इसका प्रसारण बॉनीवुड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया. बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की लिखित नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है.